आस्तिक की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कीर्ति, पृथ्वी और जानवी सब मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखते हैं और पार्टी की बात पर सब खुश हो जाते हैं। आस्तिक अरुणिमा को देखता है जिसकी चेहरे पर हैरानी के भाव है, मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि आस्तिक उसके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। आस्तिक कहता है, मैं प्रणाली और सक्षम को इन्वाइट करने की सोच रहा हूँ। शादी के बाद वो दोनों अपने अपने बिजनेस में इतने खो गए कि दोबारा हमसे मिलने भी नहीं आए हैं। मैं सोच रहा हूँ इसी बहाने वो लोग घर भी आ जाएंगे। सब हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद आस्तिक अरुणिमा को देखकर कहता है, और इस पार्टी में क्यों ना हम अरुणिमा की माँ को भी शामिल करें। जैसे ही आस्तिक ने ये कहा, अरुणिमा अपनी आंखें बड़ी किए हुए आस्तिक को देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आस्तिक ने उसकी माँ को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। आस्तिक अरुणिमा से कहता है, मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए तुम अपनी माँ से नहीं मिली हो, तुम्हें उनकी याद तो आती होगी ना। अरुणिमा के आंसू निकलने वाले थे। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और अपने चेहरे पर आए भाव को छुपा लिया। सब ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए थे। कीर्ति कॉलेज चली गई थी। अरुणिमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कल रात आस्तिक का जुल्म इतना ज़्यादा था कि अरुणिमा का मन आज कॉलेज जाने का नहीं कर रहा था। पृथ्वी और जानवी आज दोपहर तक साथ रहने वाले थे। पृथ्वी जानवी को मूवी दिखाने ले जा रहा था और उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल चला जाता। अरुणिमा खुश थी जानवी के लिए। उसकी ज़िंदगी में भले ही ऐसा दिन नहीं आया था कि उसे आस्तिक के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पड़े, इसीलिए जब भी पृथ्वी जानवी को कहीं ले जाने की बात करता तो जानवी हमेशा ये कहकर मना कर देती कि अरुणिमा घर पर अकेली हो जाएगी, पर वो अरुणिमा ही होती है जो ज़बरदस्ती जानवी को पृथ्वी के साथ भेज देती है। आस्तिक इस समय कमरे में तैयार हो रहा था और अरुणिमा उसकी चीज़ें एक एक करके तैयार कर रही थी। उसका पर्स, फ़ोन, घड़ी सब अरुणिमा ने उसके हाथ के पास ही रख दिया था ताकि उसे ढूंढना ना पड़े। आस्तिक अपने गले की टाई सही कर रहा था और अरुणिमा आस्तिक का कोट लेकर आती है। वो आस्तिक को कोट पहनाकर उसके बटन लगाते हुए उसे सही कर रही थी। तभी आस्तिक आईने में खुद को देखते हुए कहता है, स्टडी रूम से मेरी एक फ़ाइल लेकर आओगी। अरुणिमा आस्तिक के कोट को सही करते हुए कहती है, कौन सी फ़ाइल? आस्तिक अपने हाथ में घड़ी को पहनते हुए कहता है, टेबल के ऊपर रखी होगी, रेड कलर की फ़ाइल है, इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। अरुणिमा कहती है, ठीक है, मैं आपकी फ़ाइल लेकर आती हूं। अरुणिमा अपने कमरे से निकलती है और स्टडी रूम में चली जाती है। वो टेबल पर इधर उधर नज़र दौड़ाती है, पर पूरी टेबल पर कोई भी फ़ाइल नहीं थी। अरुणिमा आसपास की जगह पर भी चेक करती है, पर वहाँ पर भी कोई रेड कलर की फ़ाइल नहीं थी। तभी अरुणिमा टेबल के पास जाती है और उसका ड्रॉ खोलकर उसमें चेक करने लगती है। टेबल के नीचे वाले ड्रॉयर में ही उसे रेड कलर की फ़ाइल मिल जाती है। अरुणिमा उस फ़ाइल को उठा लेती है, लेकिन तभी उस फ़ाइल के नीचे एक दवाइयों की शीशी मिलती है। अरुणिमा हैरानी से उसे दवाई की शीशी को देख रही थी। न जाने क्या सोचते हुए उसने उस दवाई को उठा लिया और उसको पढ़ने लगी। उसे पढ़कर अरुणिमा की आंखें छोटी हो गई और वो अपने मन में कहती है, क्या राजा साहब कोई दवाई लेते हैं? नहीं नहीं, राजा साहब दवाई क्यों लेंगे, वो बीमार थोड़ी ना है। पर अगर राजा साहब ये दवाई नहीं ले रहे हैं तो फिर ये दवाइयाँ उनके टेबल पर क्या कर रही हैं? अरुणिमा उस दवाई के शीशे को हाथ में लेकर सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से आस्तिक की आवाज़ आती है, अरुणिमा मुझे लेट हो रहा है। आस्तिक की आवाज़ सुनकर अरुणिमा डर जाती है। वो जल्दी से उस दवाई को वापस से ड्रॉअर में रख देती है और ड्रॉअर बंद करके फ़ाइल हाथ में लेकर स्टडी रूम से बाहर आती है। आस्तिक बाहर हॉल में ही खड़ा था। जब अरुणिमा उसके पास आती है तो आस्तिक उसके हाथों से फ़ाइल लेते हुए कहता है, क्या सो गई थी स्टडी रूम में? अरुणिमा आस्तिक का लैपटॉप बैग लाते हुए कहती है, नहीं, वो फ़ाइल मिल नहीं रही थी ना। आस्तिक ऑफिस के लिए जा चुका था, लेकिन अरुणिमा अभी भी उन दवाइयों के बारे में सोच रही थी जो उसने स्टडी रूम में देखी थी। अलवर, सक्षम और प्रणाली इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मीनाक्षी चाची भी उनके साथ ही थी। दाईमा एक नौकर के साथ मिलकर सबको नाश्ता परोस रही थी। कहने के लिए तो मीनाक्षी नाश्ता कर रही थी, लेकिन अपनी एक नज़र से वो प्रणाली को भी देख रही थी। पिछले एक महीने से प्रणाली ने यहाँ आकर उनकी नाक में जो दम कर रखा था, उसके बाद तो वो और प्रणाली एक छत के नीचे रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। प्रणाली ने शादी के एक हफ्ते में ही मीनाक्षी को यह एहसास करवा दिया था कि प्रणाली से पंगे लेना मीनाक्षी को भारी पड़ सकता है, इतना कि वो उन्हें उस घर से बाहर भी निकाल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वर्षा के पढ़ाई के लिए सक्षम जो पैसे भेजता है वो बंद हो जाएंगे। सक्षम ब्रेकफास्ट करते हुए प्रणाली से कहता है, राजा साहब की कॉल आई थी। प्रणाली के हाथ रुक जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हुए और वो सक्षम को देखने लगती है। सक्षम कहता है, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते रानी साहिबा का जन्मदिन है, हम लोगों को बुलाया है। प्रणाली गहरी सांस छोड़ती और कहती है, तुम चले जाना, कुछ दिनों में फैशन शो होने वाला है, मेरे पास काम ज़्यादा है। लेकिन सुकून से सांस लेने के लिए मीनाक्षी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो सक्षम और प्रणाली को देखकर कहती है, अरे काम तो होता ही रहेगा, और तुम्हारा काम कौन सा वहाँ जाने से रुक जाएगा, और वैसे भी शादी के बाद तुम अपने मायके भी नहीं गई हो। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए, और फिर तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, इस खुशी में तो तुम्हें जाना ही चाहिए ना।
प्रणाली घूरते हुए मीनाक्षी को देखती और कहती है, भाभी का जन्मदिन है और आपको देखकर ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा खुशी तो आपको हो रही है। प्रणाली की बात सुनकर मीनाक्षी का चेहरा हैरानी से भर जाता है और सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, प्रणाली, चाची की बात का वो मतलब नहीं था, लेकिन चाची ने गलत भी तो नहीं कहा है। जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी महल नहीं गए हैं, शायद यही मौका सही रहेगा, हमें वहां जाना चाहिए। प्रणाली कुछ नहीं कहती है और डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे कमरे की तरफ चली जाती है। सक्षम भी डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे की तरफ जाता है तो देखता प्रणाली अपने बेड पर बैठी हुई है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। सक्षम प्रणाली के पास जाता और कहता है, क्या हुआ, तुम महल क्यों नहीं जाना चाहती हो? अचानक से प्रणाली का चेहरा उदासी से भर जाता है और वो एक गमगीन आवाज में कहती है, मैं भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगी।